ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ஆப் சபி நே ராஜயோக அபியாஸ் கே சத்ரோ மே ஸ்வயம் கி பஹ்சான், பரமாத்மா கி பஹ்சான் ப்ராப்த கி, ராஜயோக கா அபியாஸ் பி கியா ஹை, ஔர் ராஜயோக சே ஹோனே வாலி அநேக ப்ராப்தியோ கே பாரே மே ஜ்ஞான் பி ப்ராப்த கியா ஔர் குச் அனுபவ் பி கியா ஹை. லேக்கின் ஜெசே ஸ்வயம் கா ஜ்ஞான் ஔர் பரமாத்மா கா ஜ்ஞான் ராஜயோக மே ஆவஷ்யக் ஹை, ஐசே ஹி சமய கா ஜ்ஞான், இஸ் சம்சார் கி ரச்சனா கா ஜ்ஞான் பி ஆவஷ்யக் ஹை. ये संसार चक्र कैसे चलता है, जब हम समय की बात करते हैं तो समय के लिए कहा जाता है समय की गति बलवान है और समय किसी का इंतजार नहीं करता. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है. समय पर कार्य करने से कार्य सफल होते हैं, और वो समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है. एक विद्यार्थी अगर परीक्षा के समय पढ़ता है तो पास होता है, और नहीं पढ़ता है तो हो सकता है कि उसका एक वर्ष व्यर्थ चला जाए. किसान अगर फसल बोने के समय पर फसल बोता है तो वो फसल काटेगा, लेकिन अगर फसल काटने के समय पर बोने जाए तो फसल नहीं मिलेगी. तो समय गुजर जाने के बाद कार्य करने से हमें उतनी सफलता नहीं मिलती है. और कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब. शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से कहा गया कि कभी भी उनको टालना नहीं चाहिए. जो कल का कार्य है वो आज ही हम पूरा कर दें, क्योंकि उसके बीच में अनेक स्थितियां परिस्थितियां कई बार उत्पन्न हो जाती हैं जो शुभ कार्य सदा काल के लिए टल जाते हैं. और समय की एक विशेषता है कि वो कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है. टाइम इज नॉट लीनियर कि एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होगा, बट टाइम इज साइक्लिक. समय चक्र में चलता है, और इसीलिए हमारी घड़ी गोल है. यानी कल 24 घंटे पहले जो समय था वही आज है, और आज से 24 घंटे बाद भी पुनः यही समय होगा. यानी घूमकर वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं. चक्र का यही अर्थ है कि वो समय पुनरावृत्त होता है. तो ये दिन और रात का चक्र अनवरत चलता रहता है, और ऐसे ही सप्ताह का चक्र है, महीने का चक्र है, साल का चक्र है, फिर 10 साल, 100 साल जिसे हम शताब्दी कहते हैं, और फिर 1000 साल. और ये पूरा सृष्टि का समय 5000 साल का चक्र है. तो जब हम इसे 5000 साल कहते हैं तो ये काफी लंबा समय है, जो हमारे एक जीवन काल से काफी अधिक है. दिन और रात के चक्र, सप्ताह के चक्र, महीने और साल के चक्र हमारे जीवन काल में हैं, तो उन पर हमें प्रश्न नहीं होता है, और हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं. 24 घंटे का दिन है, हम बहुत व्यस्त हैं, और हमें वो दिन के 24 घंटे कम लगते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि दिन 40 घंटे का क्यों नहीं है, 40 घंटे का कर दिया जाए तो अच्छा है, हो जाएगा. प्रकृति के तरफ से वो निश्चित है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी अक्ष पर परिक्रमा करती है, वो 24 घंटे में परिक्रमा पूरी होती है, उसके अनुसार दिन और रात का चक्र चलता है, पूरे वर्ष का चक्र चलता है, वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी होती है। हम ये नहीं कहते 400 दिन का साल क्यों नहीं है, क्यों 365 दिन है, प्रकृति की तरफ से वो समय निश्चित है और हम उसे स्वीकार करके चलते हैं। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का समय भी निश्चित है, जो सबसे बड़ा चक्र है, जिसे हम इस सृष्टि का काल चक्र कहते हैं। और कोई भी चक्र जो प्रारंभ होता है, अनेक चक्र चलते हैं संसार में, हर चक्र की प्रारंभिक अवस्था बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ और सत्व प्रधान होती है, शक्तिशाली होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, भौतिकी का एक नियम है, जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसके अनुसार जो ऊर्जा है किसी भी क्लोज सिस्टम में, धीरे धीरे वो नष्ट होती है, और इसीलिए कोई भी नई चीज पुरानी होती है, और पुरानी होते होते एक समय आता है जब उसे नष्ट कर देना पड़ता है या वो अपने आप नष्ट हो जाती है। और यदि हमें उसे पुनर्जीवित करना है तो फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वो पुनर्जीवित हो सकती है। तो इसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, और ये इस जगत में भी लागू है। तो इसीलिए हर चक्र अपने प्रारंभ में, जब वो नया होता है तब श्रेष्ठ शक्तिशाली होता है, लेकिन जब अंतिम चरण तक पहुंचता है तो शक्तियां पूरी तरह से क्षीण हो जाती हैं, वो कमजोर पड़ता है, तो या तो समाप्त हो जाता है और नहीं तो फिर उसको रिज्यूवनेट किया जाता है, वो पुनः प्रारंभ होता है। तो यदि हम दिन और रात का चक्र देखते हैं तो प्रातः काल का समय शुद्ध समय है, मन सात्विक अवस्था में होता है, शांत होता है, बुरे विचार हमारे लगभग दबे हुए होते हैं, मन ऊर्जा से भरपूर होता है। लेकिन दिन में हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे वो शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और शाम तक हम थकने लगते हैं। और जब हम थक चुके होते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति भी क्षीण होती है, और इसीलिए हम देखते हैं रात्रि तक आते आते मनुष्य के मन में अधिक बुराइयां जागृत होती हैं, और जितने भी बुरे काम होते हैं वो रात्रि के समय होते हैं, चाहे वो चोरी है, डकैती है, लूटमार है, या अन्य भी जो भी बुरे काम होते हैं वो रात्रि का समय किए जाते हैं। हम विश्राम करते हैं और उससे फिर से हम अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करते हैं, शरीर अपनी शक्ति प्राप्त करता है और ब्रेन भी, मस्तिष्क भी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करता है, और फिर से एक नया चक्र प्रातः काल के प्रारंभ से शुरू हो जाता है। प्रकृति का चक्र है, पानी भाप बनता है समुद्र से, बादल बनते हैं और वो बादल बरसते हैं पहाड़ों पर, वो पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, जो झरने के रूप में बहता है, नदी का रूप लेता है, और उस नदी के पानी का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, तो उसमें गंदगी मिलने लगती है, और जब वो समुद्र तक पहुंचता है पानी, तब तक वो मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होता है, सबसे गंदा पानी, यानी उसकी सबसे अंतिम अवस्था हम कहेंगे वो जब नदी सागर में जाकर मिलती है। लेकिन जैसे ही सागर में मिलती है, वो सूर्य पुनः उस चक्र को जीवित करता है, गंदगी नीचे रह जाती है, पानी फिर से भाप बनता है, फिर से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और ये चक्र भी चलता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन का चक्र है। एक बच्चा जन्म लेता है उसे भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि बालक बहुत शुद्ध और पवित्र होता है, उसे बुराइयों का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए बच्चे की पवित्रता सबको आकर्षित करती है। वो ऊर्जा से भरपूर होता है और जैसे जैसे वो युवावस्था में आने लगता है, बुराइयों का ज्ञान होता है, जीवन में बुराइयों का प्रयोग भी होने लगता है, शक्तियां क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती हैं, प्रौढ़वस्था आ जाती है। प्रौढ़वस्था में पूरी तरह से जीवन में हम बुराइयों को प्रयोग कर रहे हैं, तेजी से शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। और जीवन चक्र का अंत मृत्यु से होता है, जो आत्मा को विश्राम देती है और फिर से पुनर्जन्म के द्वारा ये मानव चक्र प्रारंभ होता है। लेकिन जो जीवन की अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था, वो सबसे तमो प्रधान अवस्था है और बालक अवस्था जो है वो सबसे शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था हमारे जीवन की है। तो इस तरह से इन चक्रों के साथ साथ ये सृष्टि चक्र भी इसी प्रकार से चलता है। सृष्टि भी अपने प्रारंभ में शुद्ध सत्व प्रधान श्रेष्ठ होती है और धीरे धीरे जैसे समय चक्र गुजरता है, अंतिम चरण में ये सबसे अधिक तमो प्रधान पतित हो जाती है। सृष्टि के सत्व प्रधान समय को सतयुग कहते हैं और सबसे अधिक तमो प्रधान समय को हम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ही बता सकते हैं कौन सा युग कहते हैं, कौन सा युग कहते हैं, कलयुग कहते हैं। तो इसे स्वास्तिक से दिखाया है, आप देख रहे हैं। स्वास्तिक हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है और जब भी हम मंगल कार्य करते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके दोनों तरफ लिखते हैं शुभ लाभ। ये स्वस्तिक संस्कृत भाषा का शब्द है जो सु अस्ति से बना है। सु माना शुभ, अस्ति माना है, यानी इस काल चक्र में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो शुभ है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला है। कई बार देखने में हमें लगता है कि हमारा बुरा हो रहा है लेकिन उसमें भी हमारा भला होता है। ये कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर बुराई है तो उसके पीछे भलाई भी है। मानो आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं और आपके घर के पास ही एक दूसरे डॉक्टर क्लिनिक खोल देते हैं, तो आपके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल समय हो जाता है कि जो आपके पेशेंट्स हैं हो सकता है कि उस डॉक्टर की क्लिनिक पर जाना शुरू कर दें। तो एक तरह से तो हमारे लिए थोड़ा सा इस प्रतिस्पर्धा के युग में बुरा ही हो रहा है, लेकिन उसमें भला क्या है? अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया तो हमारे पेशेंट्स दूसरी क्लिनिक में जाएंगे। तो भला क्या हुआ, हमारी सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हर घटना जो भी जीवन में घट रही है उसमें कहीं ना कहीं अपरोक्ष हमारा लाभ छुपा हुआ होता ही है। और स्वस्तिक की जो भुजाएं हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट होती हैं। इसकी पहली भुजा राइट एंड अप है, दूसरी राइट एंड डाउन, तीसरी लेफ्ट एंड देन लेफ्ट एंड अप है, जो हर युग में आत्मा की अवस्था का प्रतीक है। जैसे सूर्य की अवस्थाओं के अनुसार दिन परिवर्तन होता है, ऐसे ही आत्मा की अवस्था के अनुसार युग परिवर्तन होते हैं और स्वस्तिक के चार बराबर भाग हैं। हर भाग 1250 वर्ष का है, संपूर्ण चक्र 5000 वर्ष का है, तो इस एक युग 1250 वर्ष का है। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग है, जिसमें आत्मा गुजरती है, अनेक जन्म पुनर्जन्म लेती है। तो जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ सतयुग में, मनुष्य आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती हैं, वो शुद्ध श्रेष्ठ पावन आत्मा है जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है। ये आत्मा की विशेषताएं होती हैं उस युग में, और इसीलिए हम उन्हें देवी देवता कहते हैं, क्योंकि इतने श्रेष्ठ मनुष्य देवी देवता है। देवी देवताएं भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, और मनुष्य में गुणों के साथ साथ कमियां भी हैं, विकार भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी हैं। तो मनुष्य भी दिखते देवताओं जैसे ही हैं, लेकिन ये अंतर है। तो देवताएं कोई आसमान में नहीं रहते, जैसे हमारे यहाँ कई बार कहा जाता है कि आसमान के ऊपर भी एक संसार है जहाँ देवी देवताएं निवास करते हैं। नहीं, देवी देवताएं इसे पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन जब वो श्रेष्ठ होते हैं, दिव्य होते हैं, पवित्र होते हैं, तो वो देवी देवता कहलाते हैं। और जब मनुष्यों में बुराइयां प्रवेश हो जाती हैं, तो वही मनुष्य असुर भी हो जाते हैं, आसुरी गुणों वाले मनुष्य यानी असुर कहलाते हैं। तो वो सतयुग का समय देवी देवताओं का समय था, जब इस जगत में उनका निवास था, वो एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत का समय, यानी संसार में एकता थी, पूरे विश्व में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग में स्वास्तिक की भुजा राइट एंड अप है, राइट हैंड शुभ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, आशीर्वाद देने के लिए, दान करने के लिए या यज्ञ तप करने के लिए हम राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, यानी वो संसार के शुभ समय का संकेत है। और अप स्थिति, हम हाथ को इस अवस्था में तब ले जाते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो देवी देवताएं परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं, और इसीलिए वो सर्व प्राप्ति संपन्न है। तन मन धन संबंध, ये चार भाग्य मनुष्य के जीवन में माने गए हैं। तन का सुख, पहला सुख निरोगी काया ये कहा गया, तो स्वस्थ और सुंदर तन, ये तन का सुख है। मन का सुख है शांत और प्रसन्न मन हो। धन का सुख है इतना धन हो कि मनुष्य की आवश्यकताएं सहज पूरी हो जाए, संघर्ष ना करना पड़े। और संबंधों का सुख है निस्वार्थ प्रेम देने वाले, सहयोग देने वाले संबंध हो। ये सभी सुख देवी देवताओं को है। तन सतो प्रधान प्रकृति के तत्वों से बना है, इसीलिए आयु लंबी होती है, लगभग 150 वर्ष की आयु वो जीते हैं, कोई रोग नहीं होता तन में, इसीलिए वहां कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयां नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब बीमारी ही नहीं है तो हो सकता है कि हमारे जो डॉक्टर भाई बहन हैं वो सोचेंगे क्या हमारा प्रोफेशन समाप्त हो जाएगा। तो खुशी की बात है या दुख की बात है, संसार से रोग कष्ट ही पूरी तरह से समाप्त होते हैं उस काल में। ऐसे ही विकार नहीं होते, मनुष्य संपूर्ण निर्विकारी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, तो पाप ही नहीं होते हैं, अपराधी नहीं होते हैं, तो इसीलिए ना पुलिस होती है, ना जेल होती है, ना कोर्ट होती है, ना जज होते हैं, ना वकील होते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। जब जीवन में कुछ बुरे कार्य हो ही नहीं रहे तो वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो मन का सुख है, देवताएं सदा ही शांत चित्त और प्रसन्न चित्त होते हैं, और यही कारण है कि आज भी जब हम मंदिरों में देवताओं के दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन मात्र ही हमें सुख देता है। हालांकि वो सिर्फ जड़ मूर्ति है, वो उनकी यादगार है, मेमोरियल है, लेकिन उस मेमोरियल के एक मिनट के दर्शन, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, हम देखते हैं वहां कितनी देर हम मूर्ति के सामने खड़े हो सकते हैं, कितनी देर खड़े हो सकते हैं, एक मिनट से ज्यादा नहीं। इतनी भीड़ होती है कि एक धक्के में अंदर और दूसरे धक्के में बाहर, आप अनुभवी होंगे जब ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वो एक मिनट का दर्शन मात्र ही आत्मा को सुख देता है। तो जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने मानसिक रूप से प्रसन्न चित्त और शांत चित्त होंगे, कि आज भी उनका वो स्वरूप हमें सुख देता है। धन का सुख इतना कि धन मिट्टी के समान है, वहां सोने चांदी हीरों के महल बनते हैं, उनके जो निवास होते हैं, और आज भी मंदिरों में हम ये वैभव देखते हैं कि वो जड़ मूर्ति को भी कितना वैभव है कि सोने के जेवरों से वो हमेशा लदी रहती है। गांव में मंदिर होगा लेकिन मंदिर का वैभव कम नहीं होगा, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं भारत के, उनके पास तो इतना धन है कि शायद बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास भी नहीं होगा, वो भी उतना नहीं कमाते होंगे जितना मंदिर में वो देवता की मूर्ति धन कमाती है। तो सोचिए जब वो चैतन्य में रहे होंगे इस विश्व में तो कितने धनवान होंगे। तो धन का सुख भी संपूर्ण है, और यथा राजा तथा प्रजा है, कोई गरीब नहीं होता, इसलिए दान करने की आवश्यकता ही नहीं है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ये वो समय था। और संबंधों का सुख है, दैवी संबंध है, देवी देवताओं में निस्वार्थ स्नेह है, और इस तरह से ये समय संसार के स्वर्ग का समय कहलाता है, जहां मनुष्यों को संपूर्ण सुख शांति और संपत्ति की प्राप्ति थी। 1250 वर्ष में सिर्फ 8 जन्म होते हैं, क्योंकि लंबी आयु होती है, और इसके पश्चात क्योंकि आत्मा की थोड़ी शक्ति कम होती है, कुछ जन्म लिए पर पवित्रता है आत्मा में तो शक्ति बहुत धीरे धीरे क्षीण होती है, तो थोड़ी सी कमी आत्मा में आती है, और उसके आधार पर युग परिवर्तन होता है, और 16 कला वाली आत्मा 14 कला हो जाती है। जैसे हम कहेंगे संपूर्ण चंद्रमा है, वो संपूर्ण चंद्रमा और एक दिन के बाद जो चंद्रमा है वो भी पूर्णिमा जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी उसकी एक कला कम हो जाती है। तो यहाँ दो परिवर्तन होते हैं, एक तो डायनेस्टी चेंज हो जाती है, जो सतयुग था वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का युग था, जिन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं, लोग सत्य नारायण की कथा करते हैं क्योंकि वो सतयुग में हुए, वो वैकुंठ के मालिक थे। लेकिन जो त्रेता युग है, यहाँ डायनेस्टी चेंज होकर के श्री राम का जन्म होता है, उनकी डायनेस्टी चलती है, वंश बदलता है, सूर्य वंश से चंद्र वंश हो जाता है, और ये श्री रामचंद्र जी का युग है, जिनकी 12 डायनेस्टी यहाँ चलती है। यहाँ भी बाकी सब कुछ समान है, तन मन धन संबंध सभी सुख हैं, एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक कुल एक मत है, वही देवी देवता धर्म है, अन्य कोई भी धर्म उस समय संसार में नहीं होता, मनुष्य आत्माएं अभी भी संपूर्ण निर्विकारी हैं, लेकिन ये सेमी स्वर्ग है। थोड़ी सी आत्मा की कला कम हो जाती है, इसलिए स्वास्तिक की भुजा राइट एंड डाउन है, थोड़ा सा उतरने का प्रतीक है। त्रेता शब्द त्रुटि से आया है, त्रुटि का अर्थ होता है ऐसी कमी जो दिखाई नहीं देती है, ये भी संस्कृत शब्द है। तो आत्मा में सिर्फ थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन जब दो युग पूरे होते हैं इस संसार में 2500 साल के बाद आत्मा की 8 कलाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि इस चक्र का आधा समय व्यतीत हो गया। 8 कलाएं कम होने से 8 कला की जो कमी आ गई वो आत्मा की शक्तियां क्षीण होने के कारण कुछ विकार उसमें प्रवेश हो जाते हैं, और इसीलिए जो स्वास्तिक की भुजा है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो अशुभ का प्रतीक है। तो ये आत्माओं के जीवन में अशुभ होता है और संसार में भी वो अशुभ होता है, जिसको कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले गए। तो अब वो देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि देवताओं के वो गुण समाप्त हो गए जिनके कारण वो देवता कहलाते थे, उसके स्थान पर कुछ बुराइयां उनके जीवन में प्रवेश हो गई। और सबसे पहली बुराई जो प्रवेश हुई वो था देह अभिमान। आत्मा 2500 साल तक इस तन का आधार ले रही है, तो देह में मोह उत्पन्न होता है, ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और जब हम दैहिक स्तर पर आ जाते हैं तो देह के स्तर पर बहुत अंतर है, ये अमीर है गरीब है, राजा है रंक है, ब्राह्मण है शूद्र है, स्त्री है पुरुष है, काला है गोरा है, तो भेदभाव पूर्ण व्यवहार होने लगता है और छोटे छोटे पाप आत्मा से होने लगते हैं। जो अभी तक आत्माएं निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र थी, उनके जीवन में दुख का अंश मात्र भी नहीं था, लेकिन जैसे ही द्वापर युग में ये पाप होने लगते हैं, उस पाप कर्म का फल दुख के रूप में आत्मा के सामने आने लगता है, तो लगता है कुछ गलत हो रहा है। जैसे हम स्वस्थ हैं तो सहज है, वो नेचुरल है, स्वस्थ रहना नेचुरल है, लेकिन यदि मुझे कुछ तकलीफ होती है, सिर दर्द है, बुखार है, उल्टी है, तो हम समझते हैं कुछ गलत है, बीमारी हुई है, तो कौन चाहिए, कौन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर ही उस बीमारी का इलाज करेगा, और फिर हम इलाज करके पुनः स्वस्थ होने का प्रयास करते हैं। यहां भी यही वो अनुभव करते हैं कि दुख आया है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, तो उसका इलाज भगवान को याद करना शुरू करते हैं, परमात्मा दुख दूर करेंगे। इसलिए स्वास्तिक की भुजा इस पोज में है, और हाथ को हम इस स्थिति में तब ले जाते हैं जब हम मांगना माना हमें किसी से कुछ लेना है, तो यहाँ परमात्मा से मांगना शुरू हो जाता है, ईश्वर को याद करना शुरू करते हैं, भक्ति पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। अब जो देवी देवताएं स्वयं पूज्य थे वही पुजारी बन जाते हैं, और अपने पूर्वजों की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो पूर्वज इतने श्रेष्ठ हैं। आज भी हमारे से जो श्रेष्ठ होते हैं उनको हम पूज्य मानते हैं, लिखते भी हैं पूज्य पिताजी एक उदाहरण के रूप में। तो देवताएं इतने श्रेष्ठ थे ये समझ थी, तो उन्हीं की मूर्तियां रख करके पूजा करना प्रारंभ कर दिया, और इस तरह से भक्ति का प्रारंभ हुआ। अब संसार में इतना पाप नहीं है, भगवान को पुकारना तो शुरू किया लेकिन इतना पाप नहीं है जो भगवान को खुद आना पड़े, तो धर्म पिताएं आने लगते हैं, इस सृष्टि का विस्तार भी होने लगता है, तो अलग अलग स्थानों पर जहां जहां सृष्टि का विस्तार होता है वहां वहां धर्म स्थापना की आवश्यकता होती है, तो एक एक धर्म पिता आते हैं और संसार के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग धर्मों की स्थापना होने लगती है। तो सबसे पहले देवी देवता धर्म के बाद मिडिल ईस्ट में इब्राहिम आते हैं और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने 10 कमांडमेंट्स दिए, जीवन के नियम, और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म अपने नियमों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहता है। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध आए, आज से 2250 वर्ष पूर्व। उन्होंने उस समय की आवश्यकता को समझा, उन्होंने देखा कि वैदिक धर्म में बहुत अंधविश्वास और कर्म कांड है, समय समय पर नर बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है, बहुत हिंसा फैल रही है। उस समय के जो राजा थे वो चक्रवर्ती बनने के लिए दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे और बहुत लोग उन युद्धों में मारे जाते थे। तो उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जीवन मूल्यों का ज्ञान दिया, करुणा का उपदेश दिया और बहुत राजाओं ने उस समय उसे स्वीकार किया, जिसमें राजा अशोक बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया और पूरे पूर्वी विश्व में बौद्ध धर्म फैला और आज भी पूर्वी विश्व बौद्ध धर्म को मानने वाला है, चाहे वो चीन है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, आज भी वहां बौद्ध धर्म की मान्यता है। उसके पश्चात पश्चिमी विश्व में क्राइस्ट आए, आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने उस समाज की स्थिति को समझा कि समाज में बहुत झूठ है, नफरत है, वैर है, तो उन्होंने सत्य और प्रेम क्षमा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, और अपने पड़ोसी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने प्रति चाहते हो। उन्होंने कृष्ण धर्म की स्थापना की और आज भी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कृष्ण धर्म का अनुयायी है। और लास्ट में फिर से मोहम्मद साहब आए, आज से 1400 वर्ष पूर्व, और उन्होंने इस्लाम को रिफॉर्म किया और मुस्लिम धर्म की स्थापना की। मिडिल ईस्ट में पूरा मिडिल ईस्ट आज भी मुस्लिम देश है, चाहे वो सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, तुर्की है, ऐसे अनेक अन्य देश भी हैं जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। और संसार एक धर्म से अनेक धर्मों में बट गया, मतभेद हो गए, अनेक मत मतांतर हो गए और समय अनुसार आत्मा की शक्तियां क्षीण भी होती जा रही हैं। तो संसार में धर्मों की स्थापना के बावजूद भी शांति होने की बजाय दुख और अशांति बढ़ता ही गया। और आया चौथा युग, द्वापर युग में दो पुर हो जाते हैं, नाम ही है द्वापर, यानी धर्म और राज्य अलग अलग हो जाते हैं। राज्य चलाने वाले राजा अलग और धर्म चलाने वाले धर्म पिता अलग हो जाते हैं। तो धर्म और राज्य का डिवीजन होता है, मनुष्य आत्माओं की आयु कम हो जाती है, अनेक तन में रोग होने लगते हैं, 80 से 100 वर्ष की आयु लगभग द्वापर युग में होती है और इस कारण जन्म की संख्या अधिक हो जाती है। 1250 वर्ष में 21 जन्म आत्माओं के होते हैं और 3/4 समय जब सृष्टि का व्यतीत हो गया तो आत्मा की कलाएं अब लगभग 2-3-4 इतनी ही रह जाती हैं, यानी शक्तियां कम, गुण कम, लेकिन कमियां ज्यादा, विकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगते हैं। और चौथा युग कलयुग में स्वास्तिक की भुजा इस पोज में है, हाथ को हम इस स्थिति में ले जाते हैं जब हमें किसी को मारना होता है, और इसीलिए कलयुग को कहा गया कलह कलेश का युग। कोई घर ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो, है ऐसा समय? माता पिता बच्चे किसी के भी विचार आपस में नहीं मिलते हैं, मत भेद मन भेद ये सर्वव्यापी है कलयुग के अंदर, और इसीलिए इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग की अनेक निशानियां धर्म पिताओं ने बताई, एक गीत बना हुआ है, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। आप सबने में सुना होगा, या बहुत पुराना गीत है। तो इसमें पूरे कलयुग की निशानियां बताई हैं, लेकिन इसके जो पहली दो लाइन है उसमें भी बहुत मीनिंग है, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। तो वैसे हंस मोती चुगता है और कौवा दाना चुगता है, ऐसा हम जानते हैं, लेकिन कलयुग में हंस दाना चुगेगा यानी जो हंस प्रकृति के लोग हैं, हंस को ऐसा पक्षी माना जाता है जो सदाचारी है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो जो सदाचारी और ईमानदार लोग होंगे उनका जीवन अभाव में बीतेगा। कहने का भाव ये है कि उन्हें संपन्नता नहीं होगी, लेकिन जो कौवे प्रकृति के लोग हैं, यानी कौवे को चालाक पक्षी माना जाता है, बेईमान धोखेबाज माना जाता है, वो मोती खाएंगे यानी वो संपन्न होंगे, वो समृद्ध होंगे। और हम देख रहे हैं वर्तमान में वो समय है कि जो ईमानदारी से आज के युग में जीवन जीता है वो अभाव का जीवन जीता है, और जो बेईमानी से जीवन जीते हैं वो संसार में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और ये देखकर हमें प्रश्न भी उठता है, ऐसा क्यों? तो कलयुग में मूल्य बदल जाएंगे। भाव ये है कि जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था, जो सदाचार ईमानदार होना सच्चा होना मनुष्य के महान गुण माने जाते थे, कलयुग में उन्हीं मूल्यों से उसे बुद्धू माना जाएगा। आज के समय में जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कौन से युग की बात कर रहे हो आप, आज के समय में अगर हम ईमानदारी से जिएंगे तो हमारे भी बाल बच्चे हैं। पहले कहते थे कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमसे ऐसी बातें बेईमानी की मत करो, समाज में मैं इज्जतदार इंसान हूँ। और आज के जमाने में कहते हैं मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनको भी मुझे पालना है, तो ईमानदारी की बात मत करो। समय ही पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। और भी निशानियां धर्म पिताओं ने बताई कि ये वो समय होगा जब अन्न पुड़ियों में बिकेगा। खासकर गुरु नानक देव जी जो अंतिम धर्म पिता हुए, उन्होंने कहा अन्न पुड़ियों में बिकेगा, गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, मानवता विहीन विज्ञान होगा, विवेक शून्य आनंद होगा। आज हम देखते हैं अन्न पुड़ियों में बिकता है, अन्न के पैकेट्स बन गए, कोई अन्न नहीं है जो पैकेट्स में, उन्होंने अपनी भाषा में कहा पुड़ियों में बिकेगा, लेकिन आज कोई अन्न नहीं है जो पैकेट्स में नहीं मिलता है। कहा दूध बॉटल में बिकेगा, दूध तो क्या पानी भी बॉटल में आ गया है ना। राजनीति में कोई नेता का कोई सिद्धांत नहीं, वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। आज का हमारा आनंद किस स्तर का है हम सब जानते हैं, कैसा मनोरंजन, किस स्तर का मनोरंजन आज हम करते हैं। पहले लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे, आज तो हाथ में ही सिनेमा है, मोबाइल पकड़ के हाथ में आप सिनेमा देख सकते हैं, ऐसा मनोरंजन हमारा आज हो चुका है। तो एक अंतिम निशानी उन्होंने कही गुरु नानक देव जी ने कि एक कुएं का पानी चार कुएं में समाएगा, लेकिन चार कुएं का पानी एक कुएं में नहीं समाएगा। उसका भाव ये है कि एक माता पिता चार बच्चों की पालना करेंगे और वही चार बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने एक माता पिता की परवरिश नहीं कर सकेंगे। जब वो समय आ जाए तब समझो वो कलयुग का अंतिम समय है। आ चुका है वो समय, आ चुका है। आज वृद्धाश्रम क्यों बनने लगे हैं, ओल्ड एज होम क्यों बनने लगे हैं? विदेश में तो है ही ओल्ड एज होम, लेकिन भारत में भी अब वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। वो दो बच्चे या चार बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते उनकी वृद्धावस्था में और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो जब कलयुग अपने चरम पर है, जैसे हम कहते हैं कि रात्रि का चरम आने वाले दिन का संकेत है, पीक ऑफ नाइट इज द इंडिकेशन ऑफ कमिंग डे, ऐसे ही अज्ञान अंधकार की चरम रात्रि, कलयुग की ये जो घोर रात्रि है, वो आने वाले सतयुग का संकेत है, जो इस सृष्टि का दिन है। कलयुग रात्रि है तो सतयुग सृष्टि का दिन है, लेकिन जैसे उस दिन और रात के चक्र को चलाने के लिए सूर्य निमित्त है, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक रात दिन में परिवर्तन नहीं हो सकती। तो इस सृष्टि में भी परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य जब उदय होते हैं, उनका अवतरण होता है, तब इस संसार की, इस अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि से ज्ञान का प्रकाश होता है। परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, उनके ज्ञान के प्रकाश से सतयुगी रूपी दिन प्रारंभ होता है। और हमने आपको पहले ही बताया, किसी भी चक्र के अंतिम चरण में जब उसे पुनर्जीवित किया जाता है तभी नया चक्र प्रारंभ होता है, और उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। अगर बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है और उसे हमें चार्ज करना है तो हमें पावर सोर्स से उसे प्लग करना पड़ता है, तब वो बैटरी चार्ज होती है। और उसी तरह से इस सृष्टि रूपी चक्र को पुनः प्रारंभ करने के लिए परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है वो पुनः इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जिसे गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। तो परमात्मा के वायदे के अनुसार भी ये सृष्टि में परमात्मा के अवतरण का समय है, जब परम धाम से परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के इसी सृष्टि के एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के कलयुगी सृष्टि को पुनः सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करने का या नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं। आज से 82 वर्ष पूर्व परमात्मा ने ये कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो वर्तमान समय संगम युग का समय है, जो कलयुग और सतयुग का संधि काल है, ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसे हम परिवर्तन का समय कहेंगे। और इस समय में परमात्मा एक अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसमें वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं। परमात्मा कोई जादू मंत्र की छड़ी घुमा करके इस संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन वो मनुष्य आत्मा और इस सृष्टि के नियम अनुसार, जो कर्मों के सिद्धांत अनुसार चलती है, उस विधान में रह करके ही इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करती है। क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, ये संसार का नियम है। तो वो हमें पाप कर्म, पुण्य कर्म और सत कर्म की गति का ज्ञान देते हैं, जो आप पिछले दो दिनों से बहुत ही सुंदर तरीके से सुन रहे हैं कि कैसे कर्म हमारे होने चाहिए और कैसे कर्म हमारे नहीं होने चाहिए, यानी मन वचन कर्म को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं। जब वो ज्ञान हमें मिलता है तो मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बनती हैं, और कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी होए। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान जो मनुष्य देवता बन जाता है, यानी नर नारायण बन जाता है, क्योंकि वो भगवान है। पढ़ाने वाला अगर शिक्षक भगवान है तो वो अपने ही समान बनाएगा। जैसे डॉक्टर पढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पढ़ा रहे हैं तो अपने ही समान डॉक्टर तैयार करेंगे। यदि कोई पढ़ाने वाला वकील है लॉ कॉलेज में तो वो वकील ही तैयार करेंगे। और अगर पढ़ाने वाला भगवान है तो वो क्या बनाएंगे? अपने ही समान भगवान भगवती बनाएंगे। भगवान भगवती वो देवी देवताएं। तो परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान और योग हमें सिखाते हैं, जो वर्तमान संगम युग पर स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो जो भी ज्ञान आपने सुना, विभिन्न विभिन्न हमारे जो वक्ता आए और जिन्होंने आपको ज्ञान सुनाया है, वो स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और वो निमित्त माध्यम जो बने, उन्होंने आपको परमात्मा का वो ज्ञान सुनाया। तो ये समय परमात्मा हमें उस नई सृष्टि में जाने के लायक बना रहे हैं। तो संगम युग का ये वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान युग है। परमात्मा अवतरण का युग है, और इस युग में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, क्योंकि पूरे 5000 साल में यही समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। अन्य किसी युग में परमात्मा अवतरण नहीं होता है। धर्म पिताएं आते हैं, धर्म आत्माएं आते हैं, क्योंकि बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है, देखो जब साधारण बीमारी होती है तो फैमिली डॉक्टर ही ठीक कर देता है, जरूरत नहीं है स्पेशलिस्ट के पास जाने की। लेकिन जब बीमारी थोड़ी बढ़ती है तो फैमिली डॉक्टर ही कहेगा आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। बीमारी गंभीर हो जाती है तो स्पेशलिस्ट कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा आपको। और अगर वो अंतिम चरण में है तो बड़े शहर में, बड़े अस्पताल में बहुत अनुभवी सर्जन वो उस बीमारी का इलाज करेंगे। तो अब संसार की बीमारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि ये आत्माओं के बस की या धर्म पिताओं के बस की बात नहीं कि वो सृष्टि का परिवर्तन कर सके। इस सृष्टि को अब परम आत्मा की आवश्यकता है, जो सुप्रीम सर्जन है जिसे हम कहेंगे। तो वो परमात्मा अवतरण का युग है अभी, जो इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। और यही श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का युग है। ऐसे होता है कि हम कोई बीज ऐसा डालते हैं जो हमने बीज बोया और वो फल देगा, तो हम एक जन्म नहीं खाते लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं। जैसे आम का बीज अगर हमने बोया तो आम का फल केवल हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। अनगिनत, हम गिन नहीं सकते इतना फल वो देने वाला होता है। तो सत्कर्मों के बीच जो परमात्मा की श्रीमत से किए गए कर्म है, वो भी इस प्रकार के ही होते हैं कि हम वर्तमान में ही उसका फल नहीं पाते लेकिन जन्म जन्मांतर वो पुण्य कर्म की पूंजी, सत्कर्मों की पूंजी हमारे साथ चलती है और हमें भाग्यवान बनाती है, जिसे हम कहेंगे तन मन धन और जन। ये सभी भाग्य हमें प्राप्त होते हैं पूरे कल्प के लिए, विशेषकर सतयुग और त्रेता युग के लिए। वो प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाले जन्मों के लिए भी वो हमारे साथ होती है। तो ये वो कर्म के बीज बोने का मूल्यवान समय है, जो हमने आपको पहले भी कहा कि जब हम समय पर कार्य करते हैं तो सफल होते हैं। वो समय गुजर गया फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। संगम युग का समय वो समय है कि यदि अभी हमने परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं किए तो पूरे कल्प में हमें परमात्मा की श्रीमत नहीं मिलेगी। तो ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है, यानी हमें पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग है। और आध्यात्मिक क्रांति का युग है। अब इसका परिवर्तन, सृष्टि चक्र का इतना बड़ा परिवर्तन कि सतयुग आ जाए, असंभव प्रतीत होता है कई बार कि कलयुग ऐसी दुनिया क्या बदलकर सचमुच सतयुगी दुनिया आ सकती है। तो उसके लिए तैयारी है महाविनाश की। जैसे कोई फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसे काट दिया जाता है और फिर से भूमि तैयार की जाती है, फिर नई फसल बोई जाती है, नया बीज बोया जाता है। जब तक पुरानी फसल को नहीं काटा गया तब तक नई फसल बोई नहीं जा सकती। ऐसे ही नई सतयुगी सृष्टि इस विश्व में आए उसके लिए पुरानी सृष्टि का महाविनाश होता है और उसकी तैयारियां भी हम देख रहे हैं। तीन प्रकार से इस सृष्टि का विनाश होता है, प्राकृतिक आपदाएं, आणविक युद्ध और तीसरा है सिविल वॉर्स, ग्रह युद्ध, विभिन्न धर्मों के आपस में युद्ध। तो अभी हम देखते हैं आज परमाणु युद्ध की इतनी तैयारियां हैं कि एक बटन दबाने की देर है, जितने भी मिसाइल्स हैं वो बटन के ट्रिगर पर हैं। विभिन्न देशों में कोल्ड वॉर चलती ही रहती है, हम सब जानते हैं। जो आपसी मतभेद हैं देशों के वो तो हैं ही हैं। वो कोल्ड वॉर कब हॉट वॉर में बदल जाएगी हम कह नहीं सकते। अभी भी ट्रंप और कोरिया के प्रेसिडेंट का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो एक भय अभी भी है कि दोनों में कब कौन कैसा डिसीजन ले ले और संसार में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया इस दुनिया में तो क्या होने वाला है। हाँ, मेरे से ज्यादा आप अधिक बता सकते हैं क्या हो जाएगा। पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। एक बम पड़ा जापान में तो क्या लाखों लोगों को एक साथ पूरी तरह से भस्म कर दिया उसने। तो अब तो उससे भी अधिक कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम तैयार हैं और बारूद के ढेर पर हमारी ये दुनिया है। ऐसी एक दुनिया तो क्या वो सात दुनिया खत्म कर सकते हैं, ऐसा समय पर हम हैं अभी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं वो भी अपना रूप दिखाती रहती हैं, क्योंकि संसार में पर्यावरण असंतुलन हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, तो उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। प्रकृति का तापमान बढ़ने से पोल्स की बर्फ पिघलने लगी है, तो सी लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से सुनामी, तूफान आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, हर साल ऐसी कोई ना कोई मेजर प्राकृतिक आपदा संसार में कहीं ना कहीं आती ही है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाना है। और अगर एक बम कहीं पड़ गया तो इतना तापमान बढ़ेगा अचानक कि पूरे पोल्स पिघल जाएंगे और तुरंत प्रकृति अपना खेल शुरू कर देगी, क्योंकि जो इतना विनाश होगा उसकी सफाई भी तो होनी है। तो वो सफाई कैसे होगी, सारा समुद्र का पानी उछल के पूरी पृथ्वी को रहेगा, क्योंकि जो बॉम्ब्स हैं उनसे अग्नि प्रकट होगी और वो अग्नि भस्म करेगी। ना कोई जलाने वाला होगा, ना कोई उठाने वाला होगा, ना इलाज करने वाले होंगे, क्योंकि सब कुछ एक साथ समाप्त होगा। वो अंतिम विनाश का रूप ऐसा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर ने तीसरी आंख खोली तो ज्वाला प्रकट हुई और सब कुछ भस्म हो गया। उनको महाकाल कहते हैं ना, विनाश का देवता कहते हैं। तो ये प्रतीक है उसका, कोई सचमुच शंकर जी खड़े होकर तीसरी आंख खोलेंगे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने विनाश के अंतिम साधन इस तरह के तैयार किए हैं कि अब कोई युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे बम पड़ेगा, उतनी अग्नि उससे निकलने वाली है कि सीधा ही सब कुछ खत्म। इस तरह का विनाश, वो अंतिम विनाश का रूप है। वो महाविनाश कब होगा? कई बार कई भाई बहने हमसे पूछते हैं, बहन जी अच्छा भगवान ने फिर कुछ डेट तो बताई होगी कि कब होगा। तो भगवान हमको डेट कॉन्शियस और डेथ कॉन्शियस नहीं बनाते। आप सब मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं, हम जानते हैं कई बार मरीजों को असाध्य बीमारियां होती हैं, कितना समय ये जिएगा वो भी मालूम होता है, लेकिन फिर भी बताते हैं, क्योंकि पता है अगर इसको बता दिया 2 महीना 3 महीना तो ये उतना भी नहीं जिएगा, उसके पहले ही। कभी भी किसी मरीज को डेथ कॉन्शियस डॉक्टर नहीं बनाएगा। तो भगवान भी इस दुनिया का डॉक्टर है, वो हमें डेथ कॉन्शियस बनाएगा? वो हमें सिर्फ सावधान करते हैं कि आने वाला समय ऐसा है, समय की पूर्व तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें इस संसार से अगर विदा होना है तो कैसे विदा होना है, वो ज्ञान परमात्मा हमें दे देते हैं। और आने वाली नई सतयुगी दैवी सृष्टि के योग्य हमें बना देते हैं कि हम इतने कम समय में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हम बन जाएं। और ये परमात्मा की शक्ति की ही कमाल होती है कि जो आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग में 5000 साल में 0 कला तक आती है, वो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म में कुछ वर्षों में, इस पूरे जन्म भी हमें वो ज्ञान योग नहीं मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों में ही हम परमात्मा से योग लगाकर पुनः अपने आप को 0 कला से 16 कला बना सकते हैं। तो उतरते हम सीढ़ी हैं और चढ़ते हम लिफ्ट हैं। ये हमारे जैसे हम कहेंगे कि व्यक्ति उड़ान भरता है तो बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो संगम युग आत्मा की उड़ान भरने का युग है, ये आत्मा की उन्नति का युग है, उसको पुरुषोत्तम बनाने का युग है। और परमात्मा शक्तियों के सहयोग से हम सहज उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो इस सृष्टि चक्र के कुछ जो विशेष कारक हैं वो हैं 3, वो हैं आत्मा परमात्मा और प्रकृति। तीनों अनादि अविनाशी हैं, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है और प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, यानी सदा ही है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, हमने सुना। तो ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है, परमात्मा इसमें साक्षी है, भगवान इस सृष्टि का क्रिएटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, लेकिन वो खेल का हिस्सा नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि जो फिल्म निर्माता होता है वो फिल्म का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फिल्म के जो एक्टर होते हैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अलग होते हैं। तो इस सृष्टि का भी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो इस सृष्टि रूपी खेल, इस अभिनय के रंगमंच पर हाजिर नहीं है, लेकिन वो अपने परम धाम में निवास करते हैं। पर इस प्रकृति और पुरुष के खेल में भी जो पुरुष है, आत्मा है, वो चेतन है। प्रकृति सत्य है, अविनाशी है, लेकिन चेतन नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वो सत्य भी है, चेतन भी है और अविनाशी भी है, इसलिए हम उसे सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तीनों ही स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति के द्वारा भी स्थापना, पालना, विनाश होती है, मनुष्यों के द्वारा भी स्थापना, पालना और विनाश होती है, और परमात्मा के द्वारा भी सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश होती है। प्रकृति की स्थापना है, प्रकृति में हम बीज डालते हैं, वो बीज अनेक तत्व प्रकृति से लेकर के पौधे का रूप लेता है, वो स्थापना हो गई। वही सूर्य पानी और हवा से बढ़ता है, पूरा फलीभूत होता है, वो उसकी पालना हो गई। और जब तूफान आते हैं प्रकृति में तो पेड़ के पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं, वो उसका विनाश भी कर देती है। तो प्रकृति में स्थापना, पालना, विनाश चलता है। ऐसे ही मनुष्य आत्माएं, किसी भी योजना का हम प्लानिंग करते हैं, वो उसकी स्थापना है, वो मन से प्रारंभ होती है, मन के विचारों से उसकी स्थापना होती है, फिर हम उसे मूर्त रूप देते हैं, तो वो उसकी पालना भी मनुष्य करते हैं। और फिर जब दंगे फसाद होते हैं या मनुष्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो संपत्ति का नाश भी करते हैं, उसका विनाश भी होता है। तो ये मनुष्यों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य होता है। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा भी इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य हमने समझा, कैसे सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, और फिर अंत में इसका महाविनाश भी कैसे होगा, और बीच में पूरी सृष्टि की पालना होती है। मनुष्य आत्माओं का प्रभाव ही प्रकृति पर पड़ता है, प्रकृति अपना कोई पुरुषार्थ नहीं करती। जब मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तब ये प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। और इसीलिए सतयुग में शेर और बकरी, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, हिंसक पशु भी हिंसा नहीं करते, क्योंकि मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान है, तो प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं वो भी अहिंसक होते हैं। हम सुनते हैं कई संत ऐसे हुए हैं जिनके पास शेर पालतू जानवर की तरह आकर बैठ जाया करते हैं, उनके मन की जो स्थिति है वो हिंसक पशुओं को भी शांत कर देती है। अपने ब्रह्मा बाबा जो हुए, जिन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनके जीवन का भी एक प्रसंग है कि एक बार वो ऐसे ही बालकनी में खड़े थे और वहां सांप गुजरा और वो पिताश्री जी के पैरों पर चढ़ करके निकल गया। उन्होंने देखा, कुछ नहीं कहा, वो सांप भी चुपचाप उन वहां से चढ़ करके और आगे जो जंगल था वहां चला गया, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। तो हमारी मन की स्थिति पर प्रकृति निर्भर करती है, प्रकृति पर वो प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होती हैं तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है, उपद्रव करने लगती है। तो आज जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं वो मनुष्य आत्माओं की स्थिति के कारण ही प्रकृति वो प्रभाव हमें दिखाती है, और सतयुग में यही प्रकृति फिर सुखदायी हो जाएगी। इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं, अनुसंधान है, क्योंकि अधिकतर सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम सुनते रहे हैं कि प्रकृति या सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, पहले सूर्य आग का बड़ा गोला था, निहारिका थी, उससे वो सूर्य अलग हुआ अरबों साल पहले, उसके बाद फिर सूर्य के टुकड़े हुए, उसमें से पृथ्वी एक टुकड़ा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, करोड़ों साल लगे उसको ठंडा होने में, पहली परत बनी उसकी, फिर दूसरी परत बनी, और फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे जीव की उत्पत्ति हुई। पहले एक कोशिकीय जीव हुए, मोनोसेल्युलर, फिर वो मल्टी सेल्युलर हुए, और धीरे धीरे विकास हुआ जिसे डार्विन की डेवलपमेंटल थ्योरी कहते हैं। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार विकास होते होते चिंपैंजी और फिर बंदर, फिर चिंपैंजी और फिर मनुष्य बना, ऐसा ही है। तो हमारे पूर्वज कौन है? इस थ्योरी के अनुसार हमारे पूर्वज कौन हो गए? बंदर। लेकिन परमात्मा ने जो ये तीनों कालों का सत्य ज्ञान दिया है, ये इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर हम डार्विन की डेवलपमेंटल थ्योरी को मानते हैं, वैसे विज्ञान भी आज उस सिद्धांत को फेल मानता है, तो अगर एक बार मान भी लिया जाए तो एक बार कोई प्रोसेस शुरू होने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन एक बार वो अगर प्रारंभ हो गया तो वो जारी रहना चाहिए। आज भी बंदर से मनुष्य बनने चाहिए, लेकिन हजारों साल पीछे का इतिहास भी हम देखेंगे तो एक भी बंदर मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य से मनुष्य ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है। यहाँ तक कि वो अमीबा भी, जो एक कोशिकीय जीव है, वो भी टू सेल्यूलर में नहीं बदलता है आज के समय में। तो फिर ये सिद्धांत ही पूरी तरह से हम कहेंगे स्वीकार करने योग्य है नहीं। इसमें सिर्फ अनुकूलन वो स्वीकार किए जा सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार जानवरों में और मनुष्यों में अनुकूलन हो जाते हैं ताकि वो उस वातावरण में जीवित रह सकें। परमात्मा ने जो हमें सृष्टि का राज समझाया, जो समय का रहस्य समझाया, उस अनुसार हमारे पूर्वज देवी देवता थे, और वो बात स्वीकार करने योग्य है क्योंकि आज भी हम देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा करते हैं जो हमसे पूर्व होकर के गए हैं। आज हम महात्मा गांधी के स्टैचू बनाते हैं, या जो भी हमारे महान पुरुष होकर के गए हैं, विवेकानंद होकर के गए हैं, मदर टेरेसा होकर के गई हैं, उनके हम स्मारक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? भले ही आज की पीढ़ी ने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन उन स्मारकों से वो जानती है कि ऐसे महान पुरुष हमारे भारत के इतिहास में हुए हैं, वो उनकी पहचान है। ऐसे ही देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो स्टैचू तो जो हम बनाते हैं महान पुरुषों के, वो देवी देवता नहीं है, उनमें देवी देवताओं जैसे गुण नहीं है, इसलिए हमने उन्हें मंदिरों में नहीं बिठाया। ओपन में उनका स्टैचू बना के हम खड़ा कर देते हैं, वो यादगार उस रूप में बनाते हैं। लेकिन देवी देवताएं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थे, इसलिए उनके हम विधि पूर्वक मंदिर निर्माण करते हैं। वो यादगारें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे। और भारतीय संस्कृति का जो गायन है, हम वो भी सुनते हैं, भारत किसी समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत संपन्न और समृद्ध था, हर क्षेत्र में वो सतयुग और त्रेता युग की यादगार है भारतीय संस्कृति की, जिसके कारण विदेशी आक्रमण हमारी भारतीय संस्कृति पर हुए। जैसे ही अन्य धर्मों की स्थापना शुरू हुई, चाहे यहूदी आए, जूइस्ट आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, फिर मुस्लिम आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर के वो आक्रमण भारत पर हुए। फिर उसके बाद जब क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियंस ने भारत पर आक्रमण किया, और इस तरह से जो भारत संपन्न और समृद्ध था वो सबके द्वारा लूट लिया गया, और वही भारत गरीब गरीब और कंगाल हो गया। कलयुग के अंतिम चरण तक आते आते वही भारत तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गया। और इसीलिए भारत भूमि ही अविनाशी भूमि कही गई और परमात्मा की अवतरण की भूमि है, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता भारत भूमि पर ही परमात्मा अवतरण की है, और इसीलिए परमात्मा इस भारत भूमि पर अभी अवतरित होकर के पुनः सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो यदि हम वर्तमान समय के महत्व को समझते हैं और इस समय के अनुसार परमात्मा की श्रीमत पर हम चलते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए हम अपने भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रारब्ध हमारे साथ जाने वाली है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये था समय की पुकार और समय का रहस्य। ओम शांति। अभी हम कुछ समय राज्यों का अभ्यास करेंगे, जैसे हर राज्यों सत्र के पश्चात आप करते हैं। हम सभी सीधे होकर बैठेंगे। अपने मन को अन्य सभी विचारों से समेट कर तैयार करें अंतर्यात्रा के लिए, जो मुझ आत्मा की परमात्मा की ओर है। मैं मस्तक के मध्य में चमकते हुए सितारे के समान चैतन्य शक्ति हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये मेरा निजी स्वभाव है। मैं अपने आदि अनादि स्वरूप में शुद्ध और पावन हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए मैंने शरीर का आधार लिया है। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है, जहां आत्माएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में कर्म कर रही हैं। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है। जहां सर्वत्र शांति है, प्रकाश है, पवित्रता है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव परम धाम के निवासी हैं। मैं मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को परम धाम में अनुभव कर रही हूँ। देखें स्वयं को, अपने पिता के समीप, उनके प्रकाश और दिव्यता मुझ पर पड़ रही है। वो शांति के सागर हैं। शिव बाबा के सानिध्य में मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है। मुझ में ईश्वरीय शक्तियां समा रही हैं। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहूँ, ला सकती हूँ। शिपावा ही मेरे सच्चे माता पिता शिक्षक और सतगुरु हैं, मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं। मैं भाग्यवान हूँ, मुझे परमात्मा ज्ञान मिला है, मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग मिला है। शिव बाबा के साथ के ये पल मुझ आत्मा के लिए बहुत अनमोल है, मुझे अतींद्रिय सुख का अनुभव कराने वाले हैं। बहुत ही हल्कापन न्यारापन में अनुभव कर रही हूँ, मेरा मन शांत होता जा रहा है। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं पुनः स्वयं को इस जगत में अपने इस भौतिक देह में अनुभव कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति शांति।